ओम शांति। सुबह के सेशन में आप मेडिटेशन सीख रहे हैं और पूरे कॉन्फ्रेंस में भी बीच बीच में मेडिटेशन के बारे में आप सबको बताया जा रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग मेडिटेशन करते आए और अलग अलग कारणों से मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो कोई मन की शांति के लिए करते हैं, कोई स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कोई कुछ प्राप्तियों के लिए करते हैं, तो अलग अलग कारण से करते हैं। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, राजयोग। योग का मतलब है जोड़, कनेक्शन, मिलन, और राजयोग माना जिस कनेक्शन से, जिनको याद करने से हम अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, अपने ही मन बुद्धि संस्कारों को हम कंट्रोल कर सकते, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य है इस मेडिटेशन का। और अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए संस्कारों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कर लिया आधा घंटा, मन की शांति मिल गई, लेकिन फिर जैसे ही कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो क्या वो शांति हमेशा रह पाएगा? हाँ, रह पाएगा? कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि परिस्थितियां, जो घटनाएं घटती है, जो लोग सामने आते हैं, जो व्यवहार हमारे सामने होता है, उस कारण से हमारे अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, तो वो शांति हमेशा के लिए नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो मेडिटेशन करते करते हमारा संस्कार ऐसा परिवर्तन हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी घटनाएं घटे, कैसे भी व्यवहार करे लोग, लेकिन मैं अपना व्यवहार बदलू नहीं, मैं अपने संस्कारों को सकारात्मक बना के रखूं, ये है सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, है ना। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर कौन से गुण और कौन सी शक्तियों की जरूरत है, वो हमें देखना होगा, क्योंकि इन शक्तियों के बिना हम जीवन में सुख शांति की अनुभूति हम नहीं कर सकते। हर इंसान सुख शांति चाहते हैं। कोई ऐसा है हॉल में या इस संसार में कोई दुख अशांति चाहते हैं? हर एक सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति हमें प्राप्त होने के लिए यहाँ पहले सुख शांति होना बहुत जरूरी है। और सुख शांति होने के लिए जैसे इन शक्तियों का शक्तियों की समझ, जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, है ना। जितना इम्यूनिटी पावर हमारा ज्यादा है शरीर का, उतना हमारे बीमार पड़ना कम होता है, है ना। अगर इम्यूनिटी पावर कम है, कहीं भी धूल मिट्टी में चले गए या फिर पोल्यूशन में गए या थोड़ा भी तो ठंड हो गया, तो फिर वो बीमारी पकड़ लिया। वातावरण में तो है, लेकिन अगर अपने जो इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ा दिया, भले वातावरण में वायरस है, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आत्मा के लिए लागू करें, तो वातावरण में नेगेटिविटी है, हमें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ दूसरों के व्यवहार, दूसरों के सोच, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो नेगेटिविटी आएगा, वो वायरस आएगा। लेकिन अगर मेरा जो मन की जो इम्यूनिटी पावर कम है, तो उसका प्रभाव मेरे पर पड़ेगा जरूर। लेकिन आत्मा की जो इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ जाए, भले कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी नेगेटिविटी हो, वाइब्रेशंस हो, उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ती और उल्टा मेरा जो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविटी है, मेरा प्रभाव उन पर पड़ेगा, ना कि नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे पर पड़ेगा। ऐसा होना चाहते हैं? ऐसा होना चाहते हैं? तो उसके लिए जैसे इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर से हेल्थ मिलती है, ऐसे इन शक्तियों के आधार से सुख शांति मिलती है। जैसे देवियों की पूजा जब हम करते हैं, देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं और हर हाथ में एक एक शस्त्र दिखाते हैं। कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल में कोई इंसान ऐसा इस धरा पर नहीं हो सकता जिसके अष्टभुजा हैं, है ना? वो अबनॉर्मल माना जाता है। लेकिन देवियों की पूजा होती है, अष्टभुजाधारी देवियों की। क्यों? क्योंकि ये अष्टभुजाएं जो है वो एक प्रतीक है। प्रैक्टिकली किसी को भी अष्टभुजाएं नहीं होती, लेकिन इसका कुछ अर्थ है, कुछ प्रतीक है जिसका जिसको समझना जरूरी है। अष्टभुजाओं में जो शस्त्र है, इन अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ये इन शस्त्रों का प्रयोग देवियां असुर संहार के लिए उपयोग करते हैं। असुर कोई इस संसार में कोई ऐसे बाहर कोई ऐसे विकराल रूप वाला जो असुर है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपने ही अंदर छिपे हुए जो असुर है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वही असुर है। तो उसको हमें उसका संहार करना बहुत जरूरी है और उसको संहार करने के लिए इन शस्त्रों को यूज करना है। लेकिन शस्त्र है क्या, कौन से शस्त्र मेरे पास है, उसका समझना जरूरी है। मेरे पास अगर गन है लेकिन उसको चलाना ही नहीं आता है, है तो सही अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन समय पर मुझे उसको चालू करना आता ही नहीं है, तो फिर रख करके क्या फायदा, है ना? तो ऐसे ही इन अष्ट शस्त्र क्या है, अष्ट शक्तियां इस चित्र में दिखाया गया है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और संयोग की शक्ति, है ना? इन शक्तियों को यूज करते हुए अगर अपने अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, सुख शांति होगा? निर्णय करने की शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्या निर्णय लेना है पता नहीं पड़ रहा है, सुख शांति रहेगी जिंदगी में नहीं, है ना? तो ये सारे एक एक करके शक्तियों को हम देखेंगे। सबसे पहली शक्ति है पावर टू विथड्रॉ या फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस चित्र में कछुआ दिख रहे हैं। कछुए की विशेषता है अपने ही कर्मेंद्रियों को वो अंदर ले सकता है जब चाहे तब, क्योंकि ऊपर का शेल उसका हार्ड है और वो एकदम सुरक्षित महसूस करता है, है ना? तो ऐसे जब भी हमें डर लगता है, जब भी ऐसे कुछ ऐसे परिस्थितियां हो, तो अपने पास भी ऐसे सुरक्षित जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वो है आत्मिक स्मृति। जब भी, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा डर किसका डर है? मृत्यु का डर है, है ना? तो जब मैं समझ लिया कि मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूं, मेरा पार्ट लिमिटेड है, एक ना एक दिन मुझ आत्मा को जाना जरूर है, तो फिर ये समझ है कि कभी ना कभी मुझे इस शरीर का त्याग करना जरूरी है। तो वो जो जगह है, आत्मिक स्थिति की जगह है, वो बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है, क्योंकि जो शक्तियों का संचार है, तो तो वहां से ही उत्पन्न होता है। क्यों कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, जो अंदर है वही बाहर निकलता है। जैसे कोई संतरे को अगर स्क्वीज करते हैं तो संतरे का जूस ही आएगा। एप्पल को जूसर में लगा डाले तो एप्पल को स्क्वीज करें तो एप्पल का जूस ही आएगा। अगर करेले को स्क्वीज करें तो करेले का जूस आएगा। करेले को स्क्वीज करके मैं ये सोचूं मुझे संतरे का जूस मिले, वो होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो अंदर है वही बाहर आएगा। अंदर यहां मेरे मन में आत्मा में जो है वही बाहर निकलता है। इसीलिए कहने में आता है वह अचानक कोई ऐसे घटना घट जाती है, किसने झूठ बोला, कुछ ऐसे व्यवहार किया, गुस्सा आ गया, गुस्से में कुछ ऐसे अपशब्द हमने बोल दिया, फिर हम बाद में हम कहेंगे वैसे तो मेरा भाव ऐसा नहीं था, है ना? भाव ऐसा नहीं था तो क्यों आया ऐसे शब्द? कहीं ना कहीं मन में था जरूर ना, जो अंदर था वही बाहर निकलता है। तो इस आंतरिक जगत को जब हम शक्तिशाली बनाते हैं तो चाहे कैसा भी परिस्थिति हो हम सकारात्मक व्यवहार ही हम कर सकते। इसलिए आंतरिक जगत मना आत्मा को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, मन को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे तूफान जब निकल होता है ना, तूफान जब होता है तो वो स्पाइरल ऐसे घूमते हुए वो आगे जाता है, राइट? तो अगर वो कोई जहाज उसके चपेट में आ जाए तो फिर वो डूबना निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जो कैप्टन को पता है कि कैसे उसके इसके निकलना है, बाहर के तरफ जाने की कोशिश करेगा तो और ही तूफान के चपेट में आ जाएंगे। तो जहाज को बचाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बीच के तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन बीच के तरफ जाते समय बहुत तूफान फास्ट है, स्पीड है, ज्यादा है, लेकिन जाना मुश्किल है। लेकिन एक बार चले गए बीच में एकदम सुरक्षित। क्यों? क्योंकि तूफान के बीच का जो जगह है ना, तो उसको कहते हैं तूफान की आंख, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। वो एकदम शांति है आई ऑफ द स्टॉर्म में, चारों तरफ तूफान है, लेकिन एकदम सुरक्षित है वहां जहाज। ऐसे ही अपने जीवन में भी चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है? तूफान है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, है तो सही। लेकिन उसमें अगर हम उसकी चपेट में आ गए तो फिर डूबना निश्चित हो गया। उससे अगर बचना है, उन तूफानों से अगर बचना है, तो मुझे अंदर के तरफ जाना होगा। जितना हम अंदर के तरफ जाते जाएंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, वहां हम शक्तिशाली बनाते जाएंगे, तो फिर अपने जीवन को हम सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग में भी कहते हैं सबसे पहला स्टेप है अपने आप को आत्मा समझ करके फिर परमात्मा को याद करना। तो बार बार अपने कर्मेंद्रियों को समेट करके यहाँ फोकस करते हुए हम मेडिटेशन करते हैं या फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। और दूसरी शक्ति है पावर टू पैक अप या समेटने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं? एक ट्रैवलर, एक यात्री अपने सूटकेस लेकर के जा रहा है। और जब भी यात्रा करते हैं आपका लगेज कैसा होता है? आप भी ट्रैवल करके आए अलग अलग जगह से, है ना? ट्रैवल करके यहाँ आए हैं, आपका लगेज कितना है? एक सूटकेस, दो सूटकेस, दस सूटकेस, कितने हैं? एक सूटकेस है ना। तो क्यों, थोड़ा बहुत ज्यादा लेके आते तो आराम से रह सकते थे ना। जब सूटकेस तैयार कर रहे थे, बैग तैयार कर रहे थे, जो बहुत ही आवश्यक चीज थी, तो उन्हीं को, उन्हीं चीजों को आपने उस सूटकेस में डाला। जो समझा कि ये इस चीज के बिना मैं 4 दिन गुजारा कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को निकाल दिया। जो बहुत ही आवश्यक चीजें थी 3 दिन के लिए, वही चीज उस सूटकेस में डाला। थोड़ा बहुत ज्यादा लगेज लेके आते, क्यों नहीं लेके आए? क्यों? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके आते तो? इसीलिए हमेशा कहते हैं ट्रैवल लाइट। क्यों ट्रैवल लाइट करना है? अपने लगेज को क्यों लाइट करना है, लाइट रखना है? यस, कम लगेज, कम चिंता। अगर एक सूटकेस की जगह आप 10 सूटकेस लेके आते, 8 सूटकेस लेके आते, मान लीजिए ट्रेन से गुजर कर रहे हैं, और फ्लाइट में तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 10 या 8 सूटकेसेस है, तो वो एक तो जगह की कमी, और फिर अगर समझ, किसी ने अगर बता दिया रात को ये ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है जहां से बहुत डकैतियां होती है, चोरी होती है, होता है, तो फिर क्या नींद आएगा? रात भर गिनते रहेंगे मेरे 10 के 10 बैगेज है कि नहीं है। अगर एक है, निश्चिंत होकर के बर्थ के नीचे डाल दिया और निश्चिंत होकर के सो गए। जितना कम लगेज उतने कम चिंता। इस ट्रैवल के लिए हम सभी ध्यान रखते हैं, लगेज जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन जीवन भी एक यात्रा है ना। जीवन रूपी यात्रा में आपका लगेज यहां कैसा है? कैसा है यहां? एक है, दो है, 10 है, 100 है, फुल है, फुल है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, क्या है लगेज यहां? जो बहुत आवश्यक लगेज है उसी को रखा हुआ है, या फिर अनावश्यक लगेज भी यहां मौजूद है? टेंशन में है। तो जो अनावश्यक जो लगेज है, वेस्ट है, तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर जितना आप इकट्ठा करते जाएंगे, यहां जितना भारीपन होता जाएगा, तो चेहरे पर मायूसी। कितना, इतना अच्छा लाइफ है, जिंदगी है, लेकिन फिर उसको हम अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। जितना यहाँ लाइटनेस है ना, हल्कापन है, उतना आप हर्षित मुख रह सकते हैं, उतना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। ये अनावश्यक लगेज कौन सा है जो हम ढो करके चल रहे हैं? वेस्ट थॉट्स है ना। वेस्ट थॉट्स क्या है? वेस्ट थॉट्स अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचते रहना, जो बातें बीत गई, इसने ऐसा कहा था 10 साल पहले, 5 साल पहले इसने ऐसा किया था, इतना मदद किया था इसको, लेकिन फिर भी उसने धोखा दे दी, इसने ऐसा बोल दिया, कर दिया, ये हो गया, सारी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, तो यहां हम स्टोर कर रहे हैं। उस स्टोर करके फायदा किसको हुआ है? किसी को भी नहीं हुआ है, अपने ही मेमोरी यूज्ड अप हो रहा है ना, उसको फ्री करने की जरूरत है। जितना मेमोरी ज्यादा भरा हुआ होगा ना, स्पीड कम हो जाता है, हैंग भी हो जाता है। तो इसके लिए इस मेमोरी को फ्री करने की जरूरत है, सारे नेगेटिव मेमोरीज। ये इंसान का एक प्रकृति है कि ये आदत है कि कोई भी पास्ट मेमोरीज है, नेगेटिव मेमोरीज को हम स्टोर करके रखते हैं, पॉजिटिव मेमोरीज को हम भूल जाते हैं। जैसे अगर मान ले आप हर रोज ट्रैवल कर रहे हैं वर्क के लिए, काम करने के लिए, जॉब के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं, 9 बजे बस लेते हैं, टाउन सर्विस बस, है ना, वहां उस समय जो आते हैं यूजुअली कुछ लोग जो उसी बस से ट्रैवल करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हो गया, आपस में बात करना शुरू, एक घंटे का सफर है तो कोई ना कुछ ऐसे है ना चर्चा करते, डिस्कस करते, मतलब कुछ ऐसे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ऐसे एक मास गुजर गया और लास्ट दिन जो 31st डे है, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बहस हो गया अपने ही जो ट्रैवलर्स है, तो यात्री है, तो उनके साथ बहस हो गया, तो लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन बहस जैसा हो गया। तो ठीक है, फिर और भी, फिर अगले मास भी आप ट्रैवल करते रहे। 2-3 मास के बाद वो जो 30 डेज का जो सुख था, 30 दिन के जो सुख थे, वो याद आता है या एक दिन के जो थोड़ा बहुत बहस है वो याद रह जाएगा, है ना? अगर तुलना करे 30 दिन के सुख और एक दिन का थोड़ा बहुत दुख, दुख भी बहुत ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा बहुत बहस हो गया था बस, कौन सा भारी है? किसको याद करने लायक है? 30 days obviously, है ना? तो 30 दिन हम सुख अनुभव किया उनको याद करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत जो बहस किया उसको लेट गो करने की जरूरत है ना? अपने आपको देखना है कि अपने मेमोरी में पास्ट के मेमोरीज, दुख के मेमोरीज ज्यादा है या सुख के मेमोरीज ज्यादा है ना? जो भी दुख के मेमोरीज है उसको हमें डिलीट करना है, निकाल देना है, क्योंकि उसको पकड़ करके कोई भी फायदा नहीं है। और उसको डिलीट करना, उसका तरीका क्या है? भूलना है, भूलना है तो भूलना, ऐसे कोई ऐसे डस्टर है तो उसको ऐसे कर दिया तो वो डिलीट हो गया, हच्ची भरते जाएंगे तो वो डिलीट होता जाएगा, ऐसा है वो? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको डिलीट करने के लिए क्षमा करना सीखना होगा। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे ना, तब तक उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन यू फॉरगिव ओनली देन यू कैन फॉरगेट। जब क्षमा करेंगे तभी तो आप भूल पाएंगे, भले बुरी तरह भूल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो अंदर जो भावनाएं थी, नेगेटिव भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना, वो कम होता जाएगा जब हम क्षमा करते जाएंगे। तो क्षमा करना सीखना होगा। क्यों, क्षमा कैसे करें? क्षमा कैसे करें? ठीक है, आपको माफ कर दिया, हो जाएगा माफ? नहीं। शुभ भावनाएं, जिनको हम प्यार करते हैं उनके प्रति अपनी शुभ भावनाएं होती है ना, ये फूले फले, आगे बढ़े, बहुत तरक्की हो, सक्सेसफुल हो, बहुत मतलब दिल से दुआएं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही जिन्होंने भी दुख दिया है उनको भी हम दुआएं दे सकते हैं, शुभ भावनाएं दे सकते हैं। क्या कहेंगे? या फिर कहेंगे, इसने ना इतना दुख दिया है, देखना ये दुखी होके मरेगा, अंदर इतना दुख ले लिया है उसके कर्म से, तो फिर दुआओं के बजाय बददुआएं निकल रही है, और बददुआ निकाल के मैं तो खुश हो रही हूं। अगर मान लीजिए 2-4 दिन के बाद उसको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, देखा उसने कर्म का, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, हम फिर खुश होना शुरू करते। अगर बददुआएं निकली तो वापस क्या आएगा अपने पास? कर्मों की कोई गति क्या कहता है? जो हम देंगे वापस अपने जीवन में आएगा। अगर बददुआएं दे रहे हैं, वापस मेरे जीवन में बददुआएं आएगी जरूर, है ना? तो इसीलिए क्षमा करना सीखना, वो साइकिल जो है ना, अगर उसने एक दिया, मैंने 2 दी, उसने 4 दिया, 8 दिया, तो फिर ये साइकिल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वहां कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना जरूरी है ना। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए पावर, समेटने की शक्ति और माफ माफ माफ, है ना। और दूसरा जो एक्स्ट्रा लगेज है भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता है कल क्या होगा, है ना। घटनाएं घटने से पहले हम यहां घटित कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी देने के कारण से वो घटनाएं अपने जीवन में जरूर घटेगा, जरूर घटेगा। तो इसीलिए हमेशा भविष्य के बारे में पॉजिटिव सोचना है। जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते जाएंगे। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा, नहीं तो ये सोचे मैं बीमार ना पड़ जाऊं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना चोरी ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ऐसे घटनाएं हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि मन उस रीति से सोचता है। जैसे अगर आपको कहे अगले 30 सेकंड के लिए अब बंदर को याद नहीं करना, तो क्या याद आया? बंदर ही याद आएगा। भले आप कितने दिनों से बंदर को याद नहीं किया होगा, हाँ विष्णुपुरी के आमने सामने जा रहे होंगे तो फिर वहां बंदर दिखे होंगे, लेकिन फिर बंदर तो ऐसे याद नहीं आया होगा आपको। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि बंदर को याद नहीं करना, तो वो बंदर का चित्र ही मन में आता है। क्योंकि वो सेंटेंस ही नेगेटिव है ना, जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। जिस सेंटेंस में नो, नहीं, नॉट, ये जो वर्ड आ गया ना, बंदर को याद नहीं करना, तो नहीं हो गया ना, आ गया ना शब्द, वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो इसीलिए उसको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो उसके बजाय क्या सोचना है? अगर मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, अगर मैं ये सोचूं बीमार ना पड़ जाऊं, बीमारी ना आ जाए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? मैं तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। तो तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। तो जो चाहिए भविष्य में उसके बारे में सोचेंगे, तो पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते जाएंगे और जो अनावश्यक चिंता है उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि चिंता में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये एक्स्ट्रा लगेजेस, पास्ट के एक्स्ट्रा लगेज, फ्यूचर के एक्स्ट्रा लगेज हम निकाल करके वर्तमान में हम जीना शुरू करते हैं और वर्तमान को उज्जवल बनाते जाएंगे, तो भविष्य तो उज्जवल बनेगा। इस मोमेंट में मुझे कैसा सोचना है, इस क्षण में मुझे क्या कर्म करना है, इस पर अगर फोकस करते चले तो फिर भविष्य उज्जवल होगा ही। ये एक्स्ट्रा लगेज है ना। तब हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं लाइट लगेज के साथ। और तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करना एक शक्ति है, कमजोरी है, पावर है, है ना। जब भी दूसरा कोई व्यक्ति अगर सहन करता है तो उसके वो देवता है, वो इतना सहन करता है, इतना अच्छा व्यक्ति है, उसका गुणगान हम करते हैं। लेकिन खुद की बारी जब आता है ना, तो मैं क्यों सहन करूं, मैं ही सहन करती रहूं क्या, आखिर कब तक सहन करना है। अगर मैं एक बार झुकूं, झुकाते रहेंगे, तो खुद के लिए वो लागू नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति अगर सहन करता है ना, उसकी महिमा हम करते हैं। क्यों हम सहन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सहन शक्ति के बारे में गलत समझ है। सहनशीलता, ये दो शब्दों में बनाओ ना, सहन और शीलता, है ना। सहनशीलता माना बाहर से भी चुप और शीतलता, यहां भी पॉजिटिव। हम सभी कभी ना कभी हमने सहन किया जरूर। जिनके प्रति मेरा प्यार है उनके प्रति उनको हम सहन कर लेते हैं, जिनके प्रति प्यार नहीं है थोड़ा भी उनको हम सहन नहीं करते हैं। अपने बच्चियों का सहन करते हैं, बहुओं को नहीं सहन करते। समाज मतलब सभी की बात नहीं कर रही, जो समाज में हो रहा है, जो अपनापन है उनको हम सहन कर लेंगे, पराये जो लोग हैं उनको हम सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। जहां प्यार है, अगर बच्चा छोटा है और बीमार पड़ रहा है बार बार, तो उसको हम देखभाल करेंगे ना, भले कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, कितना भी नींद त्याग करना पड़े, कितना भी फाइनेंस कितना टाइट हो रहा है, फिर भी उसकी देखभाल हम करेंगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। अगर कोई अपने रिश्तेदार आपके घर में उनके बच्चे को छोड़ा है, वो गांव में रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए आपके घर में छोड़ा है उस बच्चे को, और वो बार बार बीमार पड़ रहा है और उसकी देखभाल करना हो रहा है, तो आप उसकी देखभाल करेंगे? देखभाल करेंगे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो पराया बच्चा है, ये मेरा बच्चा था, इसलिए मेरी जवाबदारी उसकी जवाबदारी में, जवाबदारी की भी बात है, लेकिन दूसरी बात है अपनेपन की बात है, है ना। जहां अपनापन है, जहां प्यार है, वहां हम सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनापन कम होने के कारण से हम लोगों को सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, संबंध में दरार पड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में डिवोर्स हो रहे हैं। सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस, स्वार्थता बढ़ने के कारण से वो फिर ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अपनापन बढ़ाना होगा और प्यार, हर इंसान के प्रति जो स्नेह की भावना, अपनेपन की भावना बढ़ता जाएगा तो सहन करने की शक्ति बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, सहन करने की शक्ति को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? कम सहन शक्ति में नहीं गुजारा होगा, नहीं गुजारा होगा गार, आत्मिक शांति के लिए। जैसे गाड़ियां चलाते हो ना, तो रास्ते में तो खड्डे होंगे, अगर गाड़ी में सस्पेंशन या शॉक अब्सॉर्बर पावरफुल है, खड्डे भले कितने भी हो, वो गाड़ी स्मूथ चलेगी, है ना। कलयुगी दुनिया में तो रास्ते खड्डे ही, मैं स्थूल रास्तों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहां चले वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगा जरूर, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से अगर मुझे स्मूथली निकलना है तो मेरा जो सहन करने की शक्ति है, मेरा जो शॉक अब्सॉर्बर है वो पावरफुल होना बहुत जरूरी है, है ना। तो फिर रास्ते के जो धक्के हैं वो नहीं लगते हैं, और शक्तिशाली आत्मा ही सहन कर सकती है। जितना हम सहन करते जाएं, उतना आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। लेकिन सहन करते करते कहीं ना कहीं जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कहने में आता है कि आखिर कब तक, क्या मुझे ही सहन करना है? जब ये बात, ये शब्द जब हम निकालते हैं, इसका मतलब है तो सही मायने में हम सहन नहीं कर रहे हैं। अगर सहन कर रहे हैं तो उसको भूल भी जाएंगे हम, अच्छा कभी सहन किया था क्या, ठीक है वो निकल गया, वो भूल भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सही मायने में सहन नहीं किया तो उसको पकड़ करके बैठेंगे। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता गया तो फिर अगर उसको वाल्व नहीं निकालते हैं तो वो बर्स्ट हो जाएगा। प्रेशर भरते 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 अगर उसका रिलीज नहीं हुआ वो फट जाएगा। ऐसे ही हम भरते जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये इसने किया, नेगेटिविटी फ्रस्ट्रेशन भरता गया भरता गया भरता गया। 10-12 बार मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर तो चल ही रहा है नेगेटिविटी। मेरे बॉस ने ऐसा डांटा, इसने क्या किया, घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं किसी के लिए। लेकिन 15वीं बार क्या होगा, 15वीं बार क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। बच्चा आकर के थोड़ा बहुत उसने कुछ खींचा, कुछ गिरा दिया, 2-4 थप्पड़, वो सारा जो फ्रस्ट्रेशन अभी तक जो भरा हुआ था तो वो सारा कुछ ये छोटे बच्चे के ऊपर सारा निकाल रही हूं। वो जो गुस्सा है वो बच्चे के कारण से नहीं हो रहा है, लेकिन जो भरा था वो सारा कुछ फ्रस्ट्रेशन एक के ऊपर, और उसी के ऊपर हम निकालते हैं, क्योंकि पता है वो अपने हैं, वो कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने रहेंगे ही। कमजोर व्यक्ति के ऊपर हम उसको निकालना शुरू कर, फिर संबंध वहां टकराव, कहीं ना कहीं अनबन का संबंध बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अगर प्रेशर ही क्रिएट नहीं हुआ तो फिर फटने का नौबत ही नहीं आएगा। ठंडा, वह स्टीमी होने ना दे, वह ठंडा रहे, उसके लिए शीतलता, इसलिए सहनशीलता। मतलब जितना हम पॉजिटिविटी हम भरते जाएंगे, वहां प्रेशर भरेगा ही नहीं। हर एक को पॉजिटिव दृष्टिकोण से पॉजिटिविटी को देखते चले तो सहन करना इजी हो जाएगा। तो फिर ये नहीं निकलेगा कि आखिर कब तक। ये मूर्ति है, हाँ मूर्ति, जब मूर्ति बनता है तो हथौड़े तो खाना पड़ेगा ना। नॉर्मल पत्थर है, नॉर्मल पत्थर को मूर्ति बनने में बहुत सहन करना पड़ता है, हथौड़े लगेंगे तभी तो मूर्ति बनेगा। अगर हमें भी मूर्ति बनना है तो फिर हथौड़े तो खानी पड़ेगी, जीवन के हथौड़े तो खानी पड़ेगी ना। हम अगर कहेंगे कि ठीक है मुझे मूर्ति नहीं बनना, पूजनीय लायक नहीं बनना है, मैं नॉर्मल पत्थर ही ठीक हूँ, तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर जीवन में सुखी रहना है, आपका सस्पेंशन पावरफुल होना बहुत जरूरी है, इसलिए सहन करने की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और चौथी शक्ति है पावर टू एडजस्ट या समाने की शक्ति। इसमें सागर देख रहे हैं, और सागर की विशेषता क्या है कि खिचड़े को बाहर फेंक देता है और अच्छी चीजों को वो अंदर ले लेता है। अगर कोई भी सुसाइड करने के लिए जाए ना, 2-4 दिन के बाद वो डेड बॉडी बाहर, अगर अंदर जाएंगे सागर के तले में जाएंगे, वहां हीरे मोती सब कुछ वहां मिलते हैं, बहुत शुद्ध होता है वहां, और वैल्यूबल चीजें वहां मिलती है, और बाहर के तरफ सारा किचड़े को बाहर कर दिया, केवल अच्छी चीज वो लेकर के, वो जो कीमती चीज सागर के तले में मिलता है। संसार रूपी सागर में रहते क्या हम सागर समान बन सकते हैं, सारा किचड़ा बाहर फेंक दे, मन को सागर समान बनाए, किचड़ा बाहर फेंक करके केवल अच्छी चीजें, हर एक के गुण को ग्रहण करने की कोशिश करे, है ना। तो केवल गुणों को ग्रहण करते जाएंगे, मेरा जो ये मन है वो बहुत वैल्यूबल बनता जाएगा। अवगुणों को ग्रहण करते जाएंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो अगर वो ग्रहण करते जाएंगे तो क्या होगा, भले ग्रहण नहीं कर रहे लेकिन उस पर ध्यान जा रहा है, हर एक के नेगेटिविटी के अवगुणों के ऊपर ध्यान जा रहा है, तो क्या होगा, जहां ध्यान जाता है वहां मेरी एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, वेयर माई अटेंशन गोज देयर माई एनर्जी फ्लोज, वेयर माई एनर्जी फ्लोज देयर माई लाइफ ग्रोज। जहां मेरा ध्यान जाएगा मेरी एनर्जी भी वहां फ्लो होता है, जहां मेरी एनर्जी गई उसको मैं अब्सॉर्ब करना शुरू हो गया, मेरा जीवन वहां पनपना शुरू हो गया। मान लीजिए एक घर, एक कमरा है, बहुत सुंदर रीति से उसको डेकोरेट किया गया है, एक सिविल इंजीनियर आएगा उस कमरे के अंदर, उसका ध्यान कहाँ जाएगा, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएगा, अगर इंटीरियर डेकोरेटर आएगा तो इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर उसका ध्यान जाएगा, अगर कोई केटरर या डाइटिशियन आएंगे तो फिर वहाँ जो भोजन रखा हुआ होगा उस पर ध्यान जाएगा, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई है तो उसके कर्टन्स और सोफे के कपड़े के ऊपर ध्यान जाएगा, तो जो है उसका उस पर ध्यान जाएगा। अगर मेरे पॉजिटिव दृष्टिकोण है, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान जाएगा, लेकिन मेरा नेगेटिविटी है दृष्टिकोण, हर एक के नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान जाएगा, है ना। तो अगर नेगेटिविटी को मैं अब्सॉर्ब करती रही, यहाँ मेरा डस्टबिन हो जाएगा। नेगेटिविटी है, डस्टबिन है, और डस्टबिन के आसपास खुशबू है, बदबू है, बदबू ही होगा, कीड़े मकोड़े मक्खियां सब कुछ वहां आकर्षित होंगे। माना अगर मेरा नेगेटिविटी है, आई अट्रैक्ट नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जी को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ और नेगेटिविटी मेरे अंदर भरता जाएगा। इसीलिए उसको चेंज करना होगा, पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करें, तब जाकर के हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। कुछ साल पहले, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे लोग, 50 लोग, 100 लोग भी एक साथ रहते थे एक किचन, है ना। अभी कैप्सूल फैमिलीज होने के बावजूद भी 4 लोग घर में हैं, फिर भी अलग अलग कमरा चाहिए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं? एक है सहनशीलता कम है, और दूसरा है दूसरों के पॉजिटिविटी को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, केवल नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा है वैसा है, केवल नेगेटिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी को तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, है ना। एक छोटी सी बात को लेकर के हम बहुत बड़ा गफलत कर लेते हैं। अभी रिसेंट न्यूज आपने सुना है ना, भारत में क्या हो रहा है, वो जो पूना के सुसाइड, वो जो मर्डर केस है, एक छोटी सी उसका सभी ने सुना है वो न्यूज, हाँ? तो वो मंगेतर है, एंगेजमेंट हो गया, उसको अगर नहीं चाहिए था तो वो मना कर सकती थी, लेकिन वो केवल ये कंप्लेंट है उसकी, उस लड़की की, वो हकलाता था, उसको वो बॉल्ड था, तो ये एक गलत, ये कमी के कारण से उसको मार दिया उसने, है ना। यहां तक एक्सट्रीम यहां तक हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, छोटी सी गलती, गलती भी नहीं है, उसको भी इतना भी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इतना भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक एक्सट्रीम स्टेप, मर्डर तक जा रहे हैं लोग। एडजस्ट करना छोड़िए, तो वहां तक एक्सट्रीम जाना तो समाज कहां तक जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो एक्सेप्टेंस, भले उसको उसके अंदर 2 कमियां थी, लेकिन 95% उसके अंदर विशेषताएं थी ना। वो बॉस्टन से पढ़ के आया था, MBA पढ़ा हुआ था, इतना अच्छा वो बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो 95% अच्छा है, 98% अच्छा है, तो 2 चीजों, वो भी फिजिकल चीजों के कारण से, है ना। तो क्या हमें भी देखने की जरूरत है कि क्या हम एक दूसरे के अंदर विशेषता को देख सकते हैं। जब नई नई शादी होती है तो बहुत अच्छा अच्छा कहते रहेंगे ना, हमारा इन लॉज बहुत अच्छे हैं, ये है, बहुत अच्छे अच्छे होते रहेंगे, करते रहेंगे, एक एक दूसरे के गुणगान करते रहेंगे, लेकिन वही 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, तो क्या होगा, क्या हो गया, कुछ ना कुछ कमी कमजोरी दिख, हर एक इंसान के अंदर वीकनेसेस है। कोई ऐसा इंसान है इस संसार में जो परफेक्ट है? कोई परफेक्ट है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। जब मैं खुद 100% परफेक्ट नहीं हूं, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं सामने वाला व्यक्ति 100% परफेक्ट होना चाहिए, नहीं हो सकता। मैं खुद 50% हूं तो मुझे 50% वाला ही मिलेगा ना, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हूं। तो क्या वो 50% पॉजिटिविटी को देख करके मैं उसके साथ एडजस्ट करके चल सकती हूं? ये बात है, नहीं तो उसको छोड़ करके नेगेटिविटी पर ध्यान जाता जाएगा। तो जब यूजुअली जब हम वर्कशॉप्स करते तो उस समय तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। हम यूजुअली एक एक्टिविटी कराते हैं, ये कहते हैं अब मन में कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में सोचिए, वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में सोचिए। आपके युगल के, आपके कप, ये जो भी कपल है, तो आपके हस्बैंड के या वाइफ के कोई भी 10 अवगुण के बारे में सोचिए, वीकनेसेस के बारे में सोचिए। ठीक है, अभी आपके हस्बैंड या वाइफ के गुण के बारे में सोचिए, 10 गुण लिस्ट करिए पॉजिटिविटी। कौन सा साइज था? नेगेटिव लिस्ट करना इजी था या पॉजिटिव लिस्ट करना इजी था? यूजुअली कहने में आता है वो जो अवगुण वाला फर्स्ट वाला ना, वो फटाफट 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 लिख लिया हमने। क्यों क्यों फटाफट लिख दिया? क्योंकि हर रोज उसी के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए लिखना इजी था, वो अवेयरनेस था। लेकिन गुणों के बारे में लिखने के लिए कहते सोचना पड़ रहा है, अच्छा क्या था, हाँ ये भी गुण है, फिर सोचने पर वो गुण याद आता है, थोड़ा दबाव डालने पर, थोड़ा प्रेशर डालने पर वो याद आता है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज गुणों को नहीं देखते हैं, है ना, तो इसीलिए एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रहा है। नेगेटिविटी को निकाल दे और पॉजिटिविटी को हम लेते चले तो एडजस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसर्न या परखने की शक्ति। जब भी कोई हीरे को या फिर सोने को परखना होता है ना, हीरे को परखना है तो फिर लेंस रखते हैं, सोने को परखना है तो वे कसौटी होता है, तो घिस करके पता चलता है कि वो कितना कैरेट का गोल्ड है। या यहाँ भी डायमंड को परखना है, वो लेंस से पता चलता है कितना उसके अंदर दाग है, कितना प्योर है, पता चलता है। अपने जीवन में भी लोगों को परखना और परिस्थिति को परखना बहुत जरूरी है। सहन करना ठीक है, समाना ठीक है, एडजस्ट करना, उसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, सॉफ्ट पावर्स कहते हैं। लेकिन परखना भी बहुत जरूरी है। क्यों परखना जरूरी है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति से मैंने एक बार धोखा खाया तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उस पर मैंने विश्वास किया था। लेकिन दूसरे बार उसी व्यक्ति से मैंने धोखा खाया तो किसकी गलती है? खुद की गलती है, क्योंकि जो पहले हुआ उससे मैंने सीख नहीं सीखी, फिर से उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, फिर से धोखा खाए, और तीसरे बार उसी व्यक्ति से अगर धोखा खाए मुझे क्या बोला जाएगा? मूर्ख, है ना, बार बार मैं धोखा खा रही हूं, बार बार मैं उस पर विश्वास कर रही हूं। परखना बहुत जरूरी है, इस व्यक्ति के साथ मुझे किस हद तक रिलेशनशिप, बिजनेस के कारण या कुछ भी, कितना कर सकते हैं वो मुझे परखना बहुत जरूरी है। और परखने के लिए क्या जरूरी है? वो लेंस अपने जीवन में क्या है? वो लेंस है परखने की शक्ति। वो परखने की शक्ति क्या है? लेंस, वो लेंस है अपने विजडम ना, बुद्धि की शक्ति। अगर बुद्धि की शक्ति इतना क्लियर है तो फिर दूसरों को परखना बहुत इजी है। बुद्धि की शक्ति या कहेंगे या विजडम कहेंगे, प्रज्ञा कहेंगे, है ना, समझदारी जो कहेंगे, तो वो जितना विजडम ज्यादा है उतना हम लोगों को देखते ही परख सकते। ये जरूरी नहीं है कि 10 साल उसके साथ जीवन गुजारने के बाद मैं उसको समझू, जरूरी नहीं है। पहले आधे घंटे में ही पता चल जाएगा वो व्यक्ति विश्वास पात्र है या नहीं है, वो विजडम क्या है, विजडम कैसे आएगा। ये तीन लेवल है, जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इंफॉर्मेशन या सूचनाएं जो मिलता है समाज से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, लोगों से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, और उससे भी पावरफुल है नॉलेज या ज्ञान, और उससे भी पावरफुल है विजडम या प्रज्ञा। अगर एक लाइन का इंफॉर्मेशन अगर मिलता है अपने को कि आपको गुस्सा नहीं करना है, एक लाइन का इंफॉर्मेशन है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, एक लाइन का इंफॉर्मेशन है आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसने, बुजुर्ग ने कहा या साधु संत, किसने भी कहा कि गुस्सा नहीं करना है। जब तक वो व्यक्ति मेरे सामने है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही वो निकल गए या कुछ ऐसे परिस्थिति आ गई, मैं गुस्सा करना शुरू कर लिया। क्यों ऐसा व्यवहार है? क्योंकि वहां समझ नहीं है गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा न करने से लाभ क्या होगा, गुस्सा करने से हानि क्या होगा। तो ये समझ ना होने के कारण से बड़े बुजुर्गों ने कहा ठीक है जब तक वो है मैं कर लूंगी, लेकिन फिर नहीं ऐसा होगा। तो जब समझ है तो वो ज्ञान में परिवर्तन होगा। इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। और ज्ञान में ताकत है, ज्ञान में शक्ति है, इसलिए ज्ञान को रोशनी कहा जाता है, ज्ञान में स्पष्टता है। वो ज्ञान अगर है, क्लैरिटी, मुझे पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ कुछ और भी चाहिए, तब जाकर के वो प्रज्ञा में परिवर्तन होगा। वो क्या है? कई बार समझ है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हानि होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? आंतरिक शक्ति की कमी है। समझ होते हुए भी किसकी कमी है? शक्ति की कमी है ना? तो गुस्सा ऑटोमेट, अचानक कुछ हुआ तो गुस्सा निकल आया। आंतरिक शक्ति, जैसे जैसे मैं उसको प्रयोग करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया, धीरे 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 वो शक्ति आना शुरू हुआ। शक्ति और मेडिटेशन से भी वो ताकत, वो शक्ति आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी, फिर वो एक्सपीरियंस, वो प्रज्ञा बन जाता है, है ना? तो इसलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो छोटों के पास नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं कि सभी बुजुर्ग समझदार है, सभी जो यंगस्टर्स है वो समझदार नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। प्रज्ञा को बढ़ाना है, विजडम को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? जिंदगी को बहुत बारीकी से देखना शुरू करना होगा। वो कब हो सकता है? जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, आध्यात्मिकता को अपनाएंगे। जब आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो वो जीवन की गहराई समझना शुरू होगा। लोगों को लगता है ना कि आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता को फॉलो करने से हमें घर बार छोड़ना होगा, नहीं। घर बार में रहते हुए जब आध्यात्मिकता को अपनाएंगे ना, तो जीवन की गहराई को समझना सहज हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हर चीज में, हर परिस्थिति में ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान को जब अपना अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा, फिर उसके सोल्यूशन लाना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे, मन क्लीन होता जाएगा और बुद्धि क्लियर होता जाएगा। बुद्धि जितना क्लियर होता जाएगा तो परखने की शक्ति अपने अंदर बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। जिस जैसे हम परखते हैं उस आधार से हम निर्णय लेते हैं, है ना? निर्णय, यहाँ इस चित्र में क्या देख रहे हैं? एक न्याय की देवी की मूर्ति है। इस मूर्ति को कहाँ देखते हैं हम? कोर्ट में। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार है और आंखों पर पट्टी है। तराजू किसका प्रतीक है? अनबायस्ड डिसीशंस, पक्षपात ना हो तो तोल मोल करके फिर निर्णय लिया जाता है। अनबायस्ड डिसीशंस का प्रतीक है वो तराजू, और तलवार ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वहां रोशनी क्लैरिटी है, और उसको अपना पराया को फिर उसको काटना बहुत इजी हो जाएगा, अपने पर अटैचमेंट को काटना बहुत इजी हो जाएगा जब समझ है, उस ताकत है, उस ज्ञान में, उस प्रज्ञा में वो ताकत है, वो अटैचमेंट को काट सकता है। क्योंकि जहां अटैचमेंट होगा, मोह होगा, अपने डिसीशंस गलत हो जाएंगे। मोहवश हमेशा गलत डिसीशंस हो जाते हैं, है ना। और आंखों पर पट्टी माना निष्पक्षता, वो तराजू भी निष्पक्षता है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके फिर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो एक प्रतीक है। आंखों पर पट्टी माना कुछ उसका अर्थ, गहरा अर्थ है। अगर सचमुच आंखों पर पट्टी बांध करके कोई निर्णय लेना हो, अगर वो अगर आप कहे वो निष्पक्षता होगी, वो रॉन्ग है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर महाभारत नहीं होता, है ना। हमेशा मोहवश उन्होंने गलत निर्णय लिया। आंखों पर पट्टी का अर्थ है जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उस पर 100% विश्वास नहीं करो, क्योंकि कहीं बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। एक बार एक जंगल में एक परिवार बसा था, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा बच्चा। हस्बैंड हर रोज सुबह वो लकड़ी काटने जाता था, और फिर लकड़ी काट करके मार्केट जा करके बेच करके शाम को आता था। और घर में एक महिला, वो जो वाइफ और एक छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा रहते थे। और घर जो भी कारोबार है, वो जो भी काम करती थी वो महिला। और एक बार पानी भरने के लिए वो कुएं के पास गई, बच्चा अकेला था। जब कुएं से पानी भर करके वो आई घर, और घर के चौकट पर, घर के जो एंट्रेंस पर एक मंगूस, ये नेवला, नेवला वो कूद कूद करके उसको देख दिखा रहा है महिला को, कि उसके मुंह पर खून के दब्बे थे। बहुत खुशी से कुछ वो कूद कूद करके दिखा रहा है। महिला को गुस्सा आया, इसने मेरे बच्चे को मार दिया करके वो घड़े को वो नेवले के ऊपर डाला, और फिर भाग करके अंदर जा करके देखा तो क्या देखा, सांप मरा था और बच्चा सुरक्षित था। और बाद में उसको अफसोस हुआ, अरे मैंने गलती कर ली। वो खून के दब्बे देख करके उसने क्या सोचा, अगर थोड़ा सा वो धीरज धरती ना, मैं देखती हूँ क्या हुआ है अंदर जा करके, धीरज थोड़ा पेशेंस रख करके वो अंदर गई होती तो फिर सच्चाई क्या है वो फिर पता चलता, और नेवले को मारने के बजाय और नेवले को और प्यार करती वो, है ना। वो खून के दब्बे देखा, अपने ही इमेजिनेशन से कुछ सोच लिया, अनुमान लगा दिया, और अनुमान लगा करके डिसीशन भी ले लिया गलत है, इसने गलती की है, डिसीशन भी ले लिया, डिसीशन लेकर के कर्म भी कर लिया, मार भी दिया। केवल डिसीशन लेती तो अलग बात थी, लेकिन डिसीशन लेकर के कर्म भी कर लिया, मार भी दिया, और फिर जा करके देखा, अफसोस हुआ। कहीं बार अपने जीवन में भी कुछ हम देखते हैं, अब देखने के बाद अपने ही फिर इमेजिनेशन, इसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए होगा, उसलिए होगा, उसने ऐसा क्यों व्यवहार किया, ये होगा, अपने ही इमेजिनेशन से कुछ सोच लेते हैं और निर्णय भी कर लेते हैं और कर्म भी कर लेते हैं। कर्म कर लेने के बाद अगर 6 महीने के बाद पता चला मैंने गलती की, बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो सोच समझ करके थोड़ा पेशेंस, सच्चाई क्या है वो देख करके निर्णय लेने की जरूरत है। और दूसरी बात है, आंखों पर पट्टी माना अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की आदत डाली, क्योंकि अंतर मन की आवाज कभी भी गलत नहीं बोलता। कोई भी गलत कर्म करने पहली बार जब जाता है, कोई चोरी करने जाए या फिर कोई गलत काम करने जाए, वो हमेशा अंतर मन आवाज उठाएगा, नहीं गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गलत बोलेगा जरूर। कोई टीनेजर है, वो पहली बार सिगरेट स्मोक करने के लिए जा रहा है, अंतर मन तो बोलेगा मम्मी ने मना किया है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व चलेगा जरूर। लेकिन उसको दबा करके फिर मैंने कर्म कर लिया कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार कर लेंगे, एक बार चोरी कर लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, तो वो दबा करके कर्म कर लिया, वो संस्कार बन गया। अंतर मन की आवाज को मैंने दबा दिया, एक बार दबाया, 10 बार दबाया, 15 बार दबाया और कर्म कर लिया, चोरी कर ली, तो फिर 15वीं बार वो बोलेगा ही नहीं अंतर मन, चोरी मत करो। इनवॉलेंट्री सोचा और चोरी की, सोचा हाथ गए चोरी करने, वो अंतर मन चुप हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा पाप इस संसार में अगर है वो कौन सा है पता है? सबसे बड़ा पाप वो अपने ही अंतर मन का खून करना, मन विवेक का खून करना, मन अंतर मन के आवाज को दबा देना बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि वो बोलना बंद करेगा तो फिर पाप कर्म बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डाले, उसको बुलंद करना है तो मन को शांत करना। जितना आप साइलेंस का अभ्यास करते हैं ना, तो अपने अंतर मन की आवाज को आप क्लियरली सुन पाते हैं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन होगा, ये मन की आवाज है या अंतर मन की आवाज है। वो जैसे दो रेडियो स्टेशन मिल जाते हैं ना, वो चून 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 चू हो जाना शुरू होगा, क्लियरली पता नहीं चलेगा क्या है, है ना। जितना मन शांत होता जाएगा तो फिर अंतर मन की आवाज क्लैरिटी से सुनाई देगा। और सातवीं शक्ति है पावर टू फेस या सामना करने की शक्ति। सहन करना भी एक शक्ति है, लेकिन जस्ट अपोजिट जो है वो सामना करने की शक्ति। जब देवियों को देखते हैं उसमें 7 देवी ऐसे हैं जो बहुत सौम्य मुस्कुराते हुए, लेकिन एक शक्ति, एक देवी ऐसी है जो विकराल रूप काली है ना। तो ये सारे जो शक्तियां हैं, दूसरी शक्तियां, वो बहुत सॉफ्ट है, सौम्य है अंदर। तो सामना करने की शक्ति जो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है, वहां काली का रूप लेना बहुत जरूरी है। हमेशा सहन करना ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कहां सहन करना, कहां सामना करना, हमें उसको उसका समझ होना बहुत जरूरी है। तो जब सामना करना है तो सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है हिम्मत। हिम्मत अगर नहीं है हम सामना नहीं कर पाते हैं। और हिम्मत कहां से लाएंगे, हिम्मत कहां से लाएंगे? शॉप में जाकर के कहेंगे भाई 10 केजी हिम्मत दे दो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हिम्मत कहां से आएगा? खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो हिम्मत आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल हम देह के आधार से कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें वो नहीं बढ़ेगा। मेरा बाप कौन है पता है, मैं कौन, वो उससे नहीं बढ़ेगा। परिवार के कारण से, मेरे स्किल्स के कारण से, मेरे इनके आधार से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आत्मिक शक्ति, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, उसमें जब मुझे विश्वास है, मुझ आत्मा के अंदर वो शक्ति है, आत्मिक बल है, तो फिर हिम्मत बढ़ेगा। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। देह के आधार से जो कॉन्फिडेंस बनाने की जब हम कोशिश करते हैं वो है ईगो, अहंकार, अहम ना। आत्मा के आधार से जब हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं वो है आत्मबल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। तो जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है तो फिर दूसरी बात है परमात्मा में विश्वास, मेरा साथी कौन है, वो सर्वशक्तिमान है। हर कोई मानता है परमात्मा बलवान है, वो शक्तिशाली है। क्या वो मुझे मदद करेंगे? वो बलशाली है, ठीक है, शक्तिशाली है, ठीक है, लेकिन मेरी मदद करेंगे परमात्मा? मदद करेंगे? हर एक की मदद करेंगे परमात्मा? आपको विश्वास है भगवान आपकी मदद करेंगे? है विश्वास या क्वेश्चन मार्क है अभी तक? क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? क्योंकि परमात्मा शक्तिशाली है, वो मुझे पता, हमें सबको, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डाउट कहाँ आता है, मुझे वो सचमुच मदद करेंगे क्या? क्योंकि वो संबंध में मुझे विश्वास नहीं है, वो परमात्मा मेरे पिता है उसमें वो गहरा विश्वास नहीं है। मान लेते, ऊपर से तो कह देते वो माता पिता बंधु सखा सब है, लेकिन सबके माता पिता है ना, मेरे भी माता पिता है तो मेरी मदद क्यों करेंगे? तो वो सबके माता पिता वो है ही नहीं है, लेकिन अपना सोचे ना कि मेरे माता पिता है ना, मुझ आत्मा के पिता है ना, मुझ आत्मा के शिक्षक और सदगुरु है ना। जब वो संबंध गहरा होना शुरू होता है फिर विश्वास। फ्रेंड्स में भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, लेकिन एक या दो ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो रात को 12 बजे भी फोन करके अगर कहे वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस पर विश्वास। क्यों विश्वास है? क्योंकि फ्रेंडशिप इतना गहरा है। क्या परमात्मा के साथ भी वो संबंध में उसको गहरा कर सकती हूँ? वो गहरा है ही है, वहां से तो है ही है, वो वहां से तो दे ही रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, अनुभव को बढ़ाने की जरूरत है। जितना खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास होगा ना, तो फिर कहेंगे आने दो, निपटा लेंगे, सामना कर लेंगे, मैं हूं ना, मेरे साथ परमात्मा है। वो उनके हाथ पकड़ करके तूफान को भी तोहफा हम बना सकते हैं। उनके हाथ पकड़ करके वो बहुत सहज हो जाएगा, बाल मक्खन से बाल जैसे निकालते हैं ना, ऐसे हमें मदद मिलती है परमात्मा से, तब हम परिस्थितियों का सामना हम कर, कितने भी विकराल परिस्थिति हो अगर परमात्मा का साथ हो तो फिर बहुत सहज हम महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे देख रहे हैं ये बच्चा सर्फ कर रहा है, एक तो उसको हिम्मत चाहिए, इतना बड़ा वेव आ रहा है उसको सामना करने की, एक तो हिम्मत चाहिए और उसको स्किल चाहिए। दूसरी बात है स्किल चाहिए कैसे सर्फ करना है। अगर स्किल ही पता नहीं है तो फिर वो सर्फ नहीं कर सकता। ऐसे ही एक तो हिम्मत और दूसरा स्किल, कैसे युक्ति युक्त हम हर पत्थर के ऊपर हमें सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा भी युक्ति युक्त रास्ता निकल सकता है स्किलफुली। हम हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्यार से ही हम रास्ता बना करके निकल सकते हैं। और तीसरी बात है, हमेशा आध्यात्मिकता में कहते हैं अगर कोई भी परिस्थिति का सामना करना है, नेगेटिविटी के आधार से सामना करेंगे वहां हार निश्चित है, पॉजिटिविटी को आधार बना करके हम सामना करेंगे तो वहां जीत निश्चित है। अगर कोई ऐसा विकराल परिस्थिति है तो फिर सहन करे या सामना करे, सहन करे या सामना करे, दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस है या जो भी ऐसा कुछ है जो विकराल है, बहुत ही एक्सट्रीम है, तो कब तक मुझे सहन करना है या सहन करना है या सामना करना है? अगर सामना भी करना है तो फिर उस व्यक्ति के प्रति मेरा नफरत नहीं है, लेकिन जो वो कर्म कर रहा है उसके प्रति हमारा नफरत है, है ना? इसलिए कहते हैं पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके प्रति हमारे कंपैशन है, उनके प्रति करुणा दया भाव है, लेकिन वो जो कर्म कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमें कार्रवाई करना तो पड़ेगा। हम कहेंगे दया खा करके उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, है ना? समाज में वो फिर वो सेफ, समाज सेफ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कार्रवाई तो करना पड़ेगा, लेकिन मन में नफरत घृणा भाव नहीं है, लेकिन फिजिकली तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नफरत पाल लेंगे ना, जिंदगी भर वो नफरत नहीं जाएगा और खुद के लिए वो बहुत हानिकारक है, है ना? और लास्ट शक्ति है पावर टू कॉपरेट या सहयोग करने की शक्ति। जब हम समाज में रह रहे हैं तो हेल्प तो चाहिए, मदद तो चाहिए, है ना? हर एक की मदद चाहिए। मदद कैसे मिलेगा? मदद कैसे मिलेगा? मांगने से मिलेगा? थोड़ा हेल्प कर लीजिए, थोड़ा मदद कर लो, मांगने से मिलेगा? मांगने से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, दो चार बार मिलेगा, लेकिन जितना हम देते जाएंगे, मदद करते जाएंगे, सहयोग देते जाएंगे, उतना सहयोग मिलता जाएगा। लेकिन कई बार हम मदद दे देते हैं, कहने में तो आता है निस्वार्थ भावना से मैंने मदद की है, आउट ऑफ द वे भी जाकर के मदद कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर फ्रेंड को कुछ मदद चाहिए, आउट ऑफ द वे जाकर के फाइनेंस का भी मदद कर लिया, कुछ रिकमेंडेशन, जॉब दिलाना, जो भी करना था सब कुछ कर लिया, तो कहने में तो था कि निस्वार्थ भावना से, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं उससे, वो अच्छा हो जाए, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, सुखी रहे। तो लेकिन 3-4 साल के बाद जब मुझे मदद की जरूरत है तो मुझे किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? उसी की याद आएगी। मुझे लगता है कि मेरा अथॉरिटी है उसके ऊपर, वो उसको मदद करना पड़ेगा, मैं उसी के पास जाऊंगी मदद मांगने के लिए, भाई ये थोड़ा सा मदद कर लो। कुछ भी कारण हो वो मना कर दे, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, तो फिर अपनी मनोदिशा क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, देखा कितने सारे लोगों ने कहा तुम मदद नहीं करो, अनसुना करके तुम आउट ऑफ द वे भी जा करके उसकी मदद की, देखो उसने मदद नहीं की, सारे स्वार्थी है, ये है वो है। फिर मैंने निर्णय कर लिया जीवन के लिए किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये राइट है, राइट है, तो गलती किसकी है, मेरी या उसकी? उसने मदद ना करके गलती की या मैं एक्सपेक्ट करके गलती की? एक्सपेक्ट करके गलती की। क्या एक्सपेक्टेशन रखना गलत है? इंसान जो भी कर्म करता है ना, एक्सपेक्टेशन के बिना कर्म नहीं करता है। आप लोग भी यहां आए, अपना समय निकाल करके, खर्च करके सब यहां आए, राइट? कुछ तो एक्सपेक्टेशन रख करके आए, यहाँ जाएंगे कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आध्यात्मिकता को के बारे में समझेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, एक्सपेक्टेशन। कोई सुपरफिशियल या स्थूल ऐसे नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन एक अच्छा एक्सपेक्टेशन था, आध्यात्मिक रूप से एक्सपेक्टेशन अच्छा था। लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर आपको मिलता है यहाँ, तो फिर आप खुश है। एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको अगर नहीं मिलता है, दोबारा आप नहीं आएंगे, राइट? तो कोई भी कर्म करते हैं, एक्सपेक्टेशन के बिना कर्म कोई इंसान करता नहीं। एक्सपेक्टेशन रखना रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखना रॉन्ग है। जैसे मदद करने से मदद मिलती है तभी तो हम मदद करेंगे, जो हम देंगे वो वापस मिलेगा तभी तो हम मदद करेंगे। अगर वापस कुछ मिलना नहीं है तो क्यों मदद करेंगे, क्यों देंगे, है ना। लेकिन रॉन्ग कहाँ है हम, मैंने इस व्यक्ति को दिया, इसी व्यक्ति से चाहिए, ये रॉन्ग है। समझ में आया? मैंने इसको दिया, इसी व्यक्ति से चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखना रॉन्ग है। मदद देते जाना है, सहयोग देते जाना है, जब मुझे आवश्यकता है कहीं ना कहीं से मुझे मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है उसी से मिलेगा, है ना। कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है, जो दोगे वो मिलेगा, जिस व्यक्ति को दोगे उसी से मिलेगा ये नहीं कहता है, जो दोगे वो मिला, जो दुख दिया तो दुख मिलेगा, सुख दिया तो सुख मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जितना हम देते चले देते चले, इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे वापस नहीं मिले, मिलेगा जरूर। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा ऑटोमेटिकली। फिर फल की चिंता सोचते रहेंगे क्यों नहीं मिला, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, इसी से मिलना था, क्यों नहीं मिला, तो वो सोचते रहेंगे तो वो फिर परेशान हो। करते चले करते चले, समय पर वो मिलता जाएगा, जितना हम देते जाएंगे उतना वापस मिलता जाएगा। ये है संयोग की शक्ति, है ना, ये अष्ट शक्तियां। इन अष्ट शक्तियों को जब हम जीवन में धारण करते हैं, अपना जीवन हीरे तुल्य हो जाएगा। हीरे की दो स्पेशलिटीज है, एक है वो बहुत सख्त है, बहुत हार्ड स्टोन है, उसको काटने के लिए हीरा ही चाहिए, हीरे के बिना वो नहीं कट सकता, हीरे को काटने के लिए हीरा चाहिए, बहुत हार्ड है। और दूसरा है बहुत खूबसूरत है, है ना, उसको एंगल से काट करके तराशते हैं, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है, कलरफुल, वो बहुत सुंदर है। ऐसे ही आत्माएं भी, हर आत्मा हीरे तुल्य बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर है, लेकिन करना क्या है अभी, केवल तराशना है। हीरा जब खान से निकालते हैं ना, ये जो पत्थर देख रहे हैं ऐसा दिखता है पत्थर, लेकिन उसी को जब एंगल से काट करके तराशते हैं वो फिर डायमंड जो है वैसे वो दिखता है, और उसका उसकी जो ये है स्पार्कल है, उसकी जो कलर्स है, फिर वो सब तरफ दिखाई देता है। ऐसे आत्मा के अंदर शक्ति है, ब्यूटी है, लेकिन केवल उसको अभी तराशने की जरूरत है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा हम उस आत्मा को तराशते हुए आत्मा की जो रोशनी है हम चारों तरफ फैला सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।